कबीर का वचन है, बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। जिनका बहुत पसारा किया हुआ है, जो बहुत बहुत जगह पर अटैचमेंट कर चुके हैं, निमित्त बन चुके हैं, उन लोगों के लिए स्वर्णमय अक्षर हैं। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। बहुत पसारा जिन किए वे भी गए निराश। बहुत पसारा करने से क्या होता है? बहुत पसारा करने से हमारी जो चेतसा है बहुगामिनी हो जाती है, बिखराव वाली हो जाती है। और बिखराव वाली जो चेतसा है वो हमको अपने घर से दूर ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का वचन है कि अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, अन्य भाव से नहीं, अनन्य भाव से। हम लोग बिखर गए हैं, बट गए, हमको पता ही नहीं कि हम पढ़ते किस लिए हैं। पढ़ते पास होने के लिए, पास होते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, और खाते हैं जीने के लिए। जीते किस लिए उस बात का किसी को पता ही नहीं। ध्यान देना जरा, हम कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए हैं? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं, बस जीते हैं। कोई ज्यादा चतुर होगा तो बोलता है जीते हैं मरने के लिए, लेकिन गहराई से देखो कि जीते हैं आप मरने के लिए नहीं। मौत किसी को पसंद नहीं है। 60 वाला, 70, 70 वाला, 100, 100 वाला, 108 की माला जपना चाहेगा, 108 भी हो गया तभी भी वो गहराई से मौत नहीं चाहता है। हम जीते मुक्त होने के लिए, ईमानदारी की बात है। नन्ने मुन्नों से पूछो, इतवार आने को है तो कितनी खुशियां छा जाती है। जेल में जो सड़ रहे हैं उनको जब पैरल पर छुट्टी का अथवा एकदम मुक्त होने के आदेश आता है तो उस दिन कितने खुश होते हैं। बैठे बैठे दो तीन घंटे सत्संग सुनते सुनते जब छुट्टी कर देते तो कैसा फ्रेशनेस आ जाती है। हालांकि है तो बढ़िया काम। तो मुक्तता इतनी पसंद है कि रगे रग में एक तोता आकाश में उड़ा जा रहा है, उसको पकड़ के सुवर्ण के पिंजरे में डाल दो। खाने पीने के लिए तुम्हारे ऊंचे से ऊंचे कीमती फल फ्रूट धर दो, सुवर्ण की कटोरी में पीने के लिए पानी दे दो, लेकिन वो जो अभी अभी मुक्त गगनगामी पोपट आया है उसको उसमें डाल दिया, जब तक उसके अंदर की लघु ग्रंथियां बंद नहीं जाती तब तक उसको खाना पीना हराम हो जाएगा। मैंने देखा चिड़िया भूखे में भूखे ऐसे जंतुओं को, ऐसे प्राणियों को देखा कि वो तड़फ रहे रोटी के टुकड़े के लिए। धीरे धीरे रोटी डालते डालते मैं उनको कमरे में ले गया और कमरा बंद कर दिया। फिर उनके आगे मिठाइयां रखो तो उनके लिए जहर हो गई, बस तड़पते बाहर निकलने के लिए, उसको ले भी। तो हर जीव जीता है मुक्त होने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं। हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं मुक्त होने के लिए। लेकिन मजे की बात है, मुक्त होने के लिए तुम जीते हैं लेकिन आज तक मुक्त होने पर के रास्ते पर कदम नहीं रख पाए। गए मंदिर में, गए मस्जिद में, गए गिरजाघर में, गए तीर्थों में, एक आश को पूरी करने के लिए अथवा एक इच्छा को छोड़कर 10 इच्छाएं बुन ली इर्द गिर्द। शुभ कर्म करते हैं लेकिन शुभ कर्म भी ऐसा ही करते हैं कि मुक्ति के बजाय बंधन ही बढ़ जाए। समेटने के बजाय हम स्वयं को बिखेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास कुछ समझदारी भी है, ऐसे लोगों के लिए ये दोहा जो कबीर जी का है सुवर्ण अक्षरों से लिख लेना चाहिए अपने हृदय की डायरी में। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश। बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। क्योंकि जगत का तुम कितना भी बहुत पसारा करोगे लेकिन वो उसमें आशा तृप्त नहीं रहेगी, आशा निराशा में ही बदलेगी। ओम ओम। तो यहां आज श्री कृष्ण का वचन है, आरुरुक्षम उनेर योगम, योग में यदि आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो, फिर भी फल की इच्छा हो जाती है। कई लोग बोलते हैं कि हम तो निष्काम भाव से करते हैं, देश की सेवा करते हैं। देश की सेवा करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने देश को बनाया है, कहीं न कहीं कमी रख दिया है, हम सेवा करके वो कमी निकाल के लोगों को सुखी कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। देश की सेवा, कुटुंब की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब सेवा, जब तक तुमने गीता को ठीक से समझा नहीं, बुद्ध पुरुषों का सानिध्य किया नहीं, तब तक मन तुमको सेवा के बहाने अपनी इच्छा तृप्ति में आपको बांटता रहेगा, बिखेरता रहेगा। और हम बिखरते बिखरते यहां तक पहुंच जाते हैं कि लोगों की नजरों से तो हम धनी हो, संत हो, प्रसिद्ध हो, सेठ हो, शाहूकार हो, लेकिन अपने आप में हम देखते हैं तो कुछ न कुछ खटकता रहता है, कुछ न कुछ कमी होती रहती है। कमी तब दिखेगी जब कमी वाले में हम बैठेंगे, और पूरा तब दिखेगा जब हम पूरे में बैठेंगे। अंतःकरण और शरीर, मन, शरीर और संसार, ये प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति कोई दिन पूरी नहीं है, और जब तक हम संसार में, शरीर में या अंतःकरण में बैठे हैं, तब तक हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। अभी कह देते हैं कि बस SSC पास हो जाए, बस शांति, बाबू परीक्षा से पेन ने हाथ डालो, बस बीजू कई नहीं मांगतो। भले बैला, गंगा माई की कृपा थी, वरदादा की दया थी, तारी मेहनत थी, जे ते कहो तू पास थी जा, थी गयो पास। પછી કે બસ બહુ સારું થઈ ગયું, પેંડા ખાવ, હવે કે બીજું કઈ નથી જોતું, પણ કોલેજમાં દાખલા મળી જાય, બસ એટલી જ વાત। ચલો કોલેજ મેં ભી હો ગયે, LGVG કરતે કરતે ડોક્ટરી કોર્સ લિયા, MBBS ભી હો ગયે। અબ ક્યા હાલ હૈ કે હમારી પોસ્ટિંગ જરા બડી સિટી મેં હો તો ટ્રેનિંગ લેને મેં મજા આયે, પોસ્ટિંગ બડી સિટી મેં હો ગઈ, ફિર કે બાપુ અબ સર્વિસ નહીં, અપના દવાખાના ખોલે તો અચ્છા હૈ, દવાખાના અપના ખોલા, અબ आप तृप्त हो गए। जिन्होंने अपना दवाखाना खोला है और देह छुरी घुमाते रहते हैं, सेवा के बहाने वाड़ीलाल में जाते हैं, VS में जाते हैं, और जगह जाते हैं, और फिर वहां से चुन चुन के मुर्गे अपने उसमें भरते और कटाकटी करते हैं, और माड़ी पे माड़ी है, कार है, दो कार है, चार कार है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, अपना प्लेन है, ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूं, फिर भी उनकी गहराई में देखोगे तो तब कबीर का वचन याद आएगा अच्छी तरह से। बहुत पसारा मत करो, कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। रात्रि को हम सो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई पसारा नहीं होता। सेठ, नौकर, राजा, रंक, सब एक अवस्था में, फुटपाथ वाला अथवा एयर कंडीशन बंगले में आराम करने वाला। प्रारंभ में वो अपने को सुखी मानता, वो अपने को दुखी मानता, मान्यता अपनी वृत्ति की है। हो सकता है फुटपाथ वाला बोले, अरे सेठ ये लोग तो क्या एयर कंडीशन में सोते हैं, कभी गर्मी पड़ी तो बीमार, अपने तो फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे हैं, अपने सुखी। उसकी मान्यता से वो सुखी भी हो जाए, और सेठ बोले क्या तो अपने शू एयर कंडीशन ने बीजू तीजू, हमें तो આજે બહુ ગરમી છે, મશીન બગડ્યું છે, લાઇટ આવી નથી, હવે મારું કે ભાઈ બન્યું, તો ઇસ પ્રકાર કી વો વૃત્તિ કરેગા તો સેઠ એર કન્ડિશન મેં હોતે હુએ ભી વો હાર્ટ કન્ડિશન મેં ઓર વો ફૂટપાથ પે હોતે હુએ ભી સુખી હો સકતા હૈ, લેકિન ફૂટપાથ સુખ કા કારણ નહીં હૈ, એર કન્ડિશન દુઃખ કા કારણ નહીં હૈ। वेदांत तुम्हें एयर कंडीशन नहीं छुड़ाता, वेदांत तुम्हें फुटपाथ पे नहीं भेजना चाहता, लेकिन वेदांत चाहता है कि जिस समय जो अवस्था आए वो अवस्था संसार की है, शरीर की है, मन की है, तुम इन सबको सत्ता देने वाले हो, तुम स्वामी होकर सेवक मत बनना। तुम अपनी महिमा, अपनी मोहर जिसको जिस प्रकार की लगाते हो, वह चीज वैसी हो जाती है। हम मंदिर में जाते हैं इसलिए कहीं नौकरी न छूट जाए, हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कहीं नरक में न पड़ जाएं, हम किसी से रिश्ता नाता रखते कि कहीं रेड़ ना आ जाए, हम किसी से बातचीत करते हैं उससे अच्छा शब्द मनते कि फलाना नाराज हो जाएगा तो इसका सपोर्ट काम में आएगा, तो फलाने के अंदर उसके अंदर जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान नहीं, तो हमारे भय ने जगहें बदली, एक कंधे से दूसरा कंधा और दूसरे कंधे से पहला कंधा, कंधे बदलते आए, दुख नाश हुआ नहीं, दुख ने कंधे बदले हैं, दुख ने जगहें बदली है। पास हो जाऊं तो शांति, प्रमोशन मिल जाए तो शांति,
लाड़ी मिल जाए तो शांति, छोकरा मिल जाए तो शांति, छोकरे को पत्नी मिल जाए तब निराश, और पत्नी को छोकरे की पत्नी। अब सब मिल जाती नहीं, और मिलती तो सबका स्वभाव सेट नहीं होता, स्वभाव सेट नहीं होता तो दादा अपसेट हो जाते हैं, और समझो सेट भी हो गए तो भी आसक्ति ऐसी होती है कि मौत सब सेट को अपसेट कर देता है। छोकरा ने भणावा गणाव्या व्यवस्थित कर दीदा, छोकरा ने घेर छोकरा छे एमने पण सारी रीते दाखल कर दीदा, बधु सेट थई गयो। पण काका तमारे सेट थवानु बाकी छे, नहीं तो बधु सेट थईलु अपसेट थई जशे। कबीर कहते तुम अपने को आप में सेट करो, फिर दूसरा तुम्हारे होने मात्र से सेट होने लगेगा। दूसरा सेट हुआ तो भी अपसेट, और अपसेट है तो भी अपसेट है। जगत का कोई काम हम पूरा कर लें तो भी अधूरा है, अधूरा तो अधूरा है ही है, लेकिन जिसको हम लोग पूरा मानते हैं वो भी अधूरा है। वह आखो दाड़ो काम करे, रात पड़े सासू ना पग दाबे, सासू के पति को के आबा रोटला कर्या, आज वासन उठ्या, छोकरा ने सुवड़ाई दीदा, पति ने पण दवा आपवानी थी आपी दीधो, बधुं निराश। बधुं काम पति को सवार थाय के केम काम पति क्यों के काम पति, बधुं बाकी छे, चा करवी बाकी छे, कप धोवा बाकी छे, छोकरा ने नवराना बाकी छे। ऐसे ही रोज काम पूरा करके आदमी सोता है, सुबह देखो तो सबका सब अधूरा है। जीवन भर तुम पूरा करते करते मर जाते, फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है, क्योंकि बहुत की आश हमें निराशा में गिरा देती है। बहुत है नहीं, बहुत के पीछे जो एक है उसका जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बहुत विषय, बहुत इंद्रियों का। अब इंद्रियां तो हमारे पास पांच है, आंख एक है लेकिन उसके विषय अनेक, रंग अनेक, कान एक है, श्रोत्र इंद्रिय एक है लेकिन उसके शब्द अनेक हैं, नाक एक है गंध अनेक है, जीभ एक है रस अनेक है। तो ये कुल पांच विषय, पांच विषय अलग अलग हैं, लेकिन पांचों विषयों को प्रकाशने वाला तो एक है। जिसने रूप को देखा उसने रस को देखा, जिसने रस को देखा उसी ने गंध को देखा, जिसने गंध को देखा उसी ने शब्द को सुना, तो ये सुनने वाला तो एक है। जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा, जिसने मित्र की वृत्ति को देखा उसी ने शत्रु की वृत्ति को देखा। तो मित्र और शत्रु ये तुम्हारी वृत्तियों का खेल है, तुम स्वरूप का ख्याल करो। आरुरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्चते, योग में आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है। कर्म करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होता है, कर्म केवल ऐसा नहीं कि किसी को मकान दिलाया, ये करा वो करा, भक्ति करना भी एक कर्म है, ध्यान करना भी एक कर्म है, जप करना भी एक कर्म है, दूसरे के आंसू लूस लेना वो भी एक कर्म है। तो बुद्ध पुरुष के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए, समझदार संत के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए हमारी नजरों में, लेकिन उनसे तुम पूछो कि तुम क्या करते हो, वो करता है तो फिर वो संत नहीं, और संत है तो करता नहीं। हम तो गुलाम नबीर के भाई हैं। गुलाम नबीर जा रहा था रास्ते से, पूनम की रात थी, कहीं नजर पड़ी कुएं में, देखा कि अरे रमजान के महीने और आज आज चांद फंसा, इधर कुएं में चांद फंस गया। बोले तू कुएं में फंस गया यार, हमारी जाति वाले सब भूखे मरेंगे, बाहर निकल। खूब डांटा फटकारा पत्थर मारे, बाहर निकल नहीं तो पिटाई करूंगा। चांद कुएं में से बाहर निकले भी कैसे? गुलाम नबीर ने कहा तू नहीं निकलेगा, लेकिन मैं तुझे निकाले बिना जाऊंगा भी नहीं, और रोजा भी मैं भी नहीं खोलूंगा, और लोग भी नहीं खोलेंगे। मैं ऐसा आदमी नहीं कि तुझे छोड़ दूं, मैं बड़ा कार्य करता हूं, मैं विशेष आगेवान हूं, तेरे को बाहर निकाल के ही छोड़ूंगा। महाराज रस्सा वस्सा इकट्ठा किया और फांसा लगाया, डाला कुएं में, पानी हिला। बोले अब हिलता है घबराता है लेकिन बाहर नहीं आता है, जरा सा तो मान। आज लोग घबराए से तो ही मानतो नहीं, कांपे से तो ही नहीं मानतो। महाराज हर एक की दुनिया अपनी अपनी होती है, जगत कैसा है मत कहो, दुनिया कैसी है उसका कोई बयान मत करो, देखने वाला कैसा है, जैसा देखने वाला है उस समय जगत ऐसा है। कीड़ी की नजर में जगत अपना, कौवे की नजर में जगत निराला, हाथी की नजर में जगत निराला, मच्छियों का जगत निराला, चूहों का जगत निराला, संसारियों का जगत निराला, साधक का जगत निराला। कोई जैनी जा रहा है और उसने देखा किसी सन्यासी को, उसके लिए वो साधु साधु नहीं। जैनी के पास कोई बुद्ध पुरुष बैठा है, जैनी के पास कोई कबीर बैठा है, जैनी कबीर की अपनी मान्यता है, कबीर का अपना अनुभव है, और जैनी गोएगा के साधु तो उसको कहेंगे जो फुमती बांधे, उबला हुआ पानी पिए और घर बार छोड़ा हुआ हो, नंगे पैर हो। कबीर न नंगे पैर है, न उबला हुआ पानी पीते, न घर बार छोड़ा है। जैनी की नजर में कबीर कबीर नहीं है, नानक कोई संत नहीं है। ऐसे ही वागरी के पास से कोई नानक गुजर जाए अथवा कोई जैनी फकीर सच्चा संत गुजर जाए तो ठीक से આ તો ઉઘારા પગે ફરે તો ખોઈ પીને આવા થઈ ગયા, અમે તો મરી હે રે માય બાપ, બાવા થઈ જાવ મજા જ. ઉસકે લીએ સાધુ હોના, લડ્ડુ ખાને કે લીએ સાધુ હોના, ઉસકે લીએ સાધુ હોના કોઈ લક્ષ્ય નહીં. તો વાઘરી કી દ્રષ્ટિ અપની હૈ, જૈની કી દ્રષ્ટિ અપની હૈ, હિન્દુ કી દ્રષ્ટિ અપની હૈ, મુસલમાન કી દ્રષ્ટિ અપની હૈ, ઓર હિન્દુઓ મેં ભી હરેક વ્યક્તિ કી અપની અપની નિગાહ હૈ. એક કુટુંબ મેં પાંચ આદમી ઓર પાંચો આદમી કી અપની અપની નિગાહ સે વો સંત કો દેખતે હૈ, ભગવાન કો દેખતે હૈ. તો દ્રષ્ટિ રેવ સૃષ્ટિ, જૈસી દ્રષ્ટિ એસી હિ સૃષ્ટિ હોતી હૈ. જિસ કાલ મેં જૈસી દ્રષ્ટિ ઉસ કાલ મેં એસી સૃષ્ટિ. જૈસી જૈસી તુમ્હારી યોગ્યતા બઢતી જાતી હૈ, જીતની જીતની વાસનાએં કમ હોતી જાતી હૈ, ઈચ્છાએં કમ હોતી જાતી હૈ, ઓર આપ અપને આપ મેં આતે રહેતે હો, ઘર મેં આતે રહેતે હો, ઉતના ઉતના આપકો ખ્યાલ હોતા હૈ કે જીવન કિતના મૂલ્યવાન હૈ, સત્સંગ કિતના મૂલ્યવાન હૈ, ઓર ફકીર કા શબ્દ કિતના મૂલ્યવાન હૈ. ગુલામ નબીર ને ક્યા કરા જરા બતા દુંગા, ફાંસા ડાલા, ખૂબ હિલાયા, પેલું આપણે ડોલ બોલ ફસાઈ જાય ને તો બિલાડી ના ફેરવી અંદર, એવી રીતે પેલો ફાંસો ફેરવ્યો, અને ફેરવતા ફેરવતા કોઈ ચટ્ટાન મેં ફસ ગયા ફાંસા. ગુલામ નબીર કે યાર અબ તો તેરે ફસાયા તો હૈ, નિકાલ કે છોડુંગા, જોર મારા અબ ચટ્ટાન સે જોર ક્યા ચલતા હૈ, બોલે કુછ ભી હો મેં તેરે કો નિકાલ કે છોડુંગા. મહારાજ નિકલ નહીં રહા, પસીના પસીના કરો, બોલે મેં એક મર્દ કી ઓલાદ હું, મેને અપની માં કા દૂધ પિયા હૈ, અબ તું કોણ હૈ, માં ક્યા હૈ, દૂધ ક્યા, તું નહીં જાનતા, કેવલ સુના સુનાયા હૈ, માં કા દૂધ પિયા હૈ, એ સબ અહંકાર કે ખેલ હૈ. મેં મારી માનું દૂધ પીધું છે, આઈ જાતે તારી બાનું દૂધ પીધું હોય તો. મહારાજ દો પાંચ દસ ઝટકે મારે, ઓર ઝટકે મારે તો રસ્સી ટૂટ ગઈ, ઓર પીઠ કે બલ સે વો બિચારા જા ગિરા, જા ગિરા તો મૂર્છિત હો ગયા. કુછ ઘડીઓ કે બાદ મૂર્છા ખુલી ઓર આંખ ખોલી, દેખા કે આકાશ મેં આયા, બોલે ઠીક હૈ થોડી સી ચોટ લગી હૈ, લેકિન તેરે કો લા કે રખ દિયા, તેરે કો લા કે મેને રખ દિયા, મેં કોઈ જૈસા તૈસા આદમી નહીં હું. તો જો અપને આપ મે નહીં હોતા, ઉસકો મન કિતને કિતને ધોખે દેતા હૈ. ફિર ગુલામ નબીર હો કે ગેઈમલ હો, કિસી જાતિ વ્યક્તિ કી બાત નહીં, જબ તક હમ અંતર્મુખ નહીં હુએ, જબ તક કાર્ય ઓર કારણ ભાવ કો હમને નહીં જાના, તો ઘટના ઘટેગી પ્રકૃતિ મે અનુકૂલ, ઓર થોપ લેંગે મેને કિયા, હોગી પ્રતિકૂલ કર દેંગે કે ઇસને કિયા. મહાત્મા બુદ્ધ કા કોઈ શિષ્ય જા રહા થા, શિષ્ય કા શિષ્ય દોનું જા રહે થે, એક સાંપ તડફ રહા થા પેડ કે નીચે, પાસ મેં કહી થોડા દૂરી પર તલાવ થા. વો સાંપ તડફા તડફા ન મરતા હૈ ન જીતા હૈ, કીડીઓ ને ઘેર લિયા હૈ, ઓર એસી બુરી હાલત. શિષ્ય ને દેખ કર ગુરુ સે પૂછા કે ભગવાન ઇસને એસા તો કોન સા કર્મ ક્યા હોગા, ઇતના તડફ રહા હૈ ઓર કીડિયા ઉસકો ઇતની ચિપક ગઈ હૈ, અધમુહા હો ગયા, ન મરતા હૈ ન જીતા હૈ, ઇસકો દેખ કર બડી કરુણા હોતી. ગુરુ ને કહા કે કુછ મહિને પહેલે અપને યહાં સે ગુજરે થે ઓર તુજે યાદ હોગા, એક મચ્છીમાર તલાવ પર મચ્છીયા માર રહા થા, જો સામને તલાવ હૈ, ઓર તુને ઉસે રોકા ભી થા, હિંસા મત કર, મત કર્મ કી જાલ બુન, લેકિન ઉસને તેરી બાત ઉડા દી ઓર હંસ લિયા. વહી મચ્છીમાર સાપ હુઆ હૈ, ઓર વો જો મચ્છીયાં હૈ વો કીડિયાં હુઈ, ઓર એક દૂસરે કો સતાતે હૈ, ઉસને ઉનકો સતાયા, ઉનકો સતાતા, કર્મ કી ગતિ ચાલુ હૈ, કર્મ નાશ નહીં હુએ. વો મચ્છીઓ કો આટા ડાલતા તો મચ્છીયાં ઓર કુછ બંધ કર ઉસકો ભી ખુલા દેતી, લેકિન ખાને વાલા ઓર ખિલાને વાલા દોનું કી યાત્રા ચાલુ રહેતી, અંત નહીં હોતા જન્મ મરણ કે ચક્કર કા. અશુભ તો બાંધતા હૈ, લેકિન શુભ કા કર્તૃત્વ ભી બાંધતા હૈ. કર્મ કિયે બિના રહે તો નહીં સકતે, કર્મ તો કરના, લેકિન કર્તૃત્વ તુમ્હારે મેં નહીં આયે, દેખા આંખ ને લેકિન આરોપ કર લિયા મેને, દેખા સુના હૈ કાન ને વૃત્તિ કે દ્વારા મેને સુના, સોચા હૈ વિચારા હૈ મન ને મેને વિચારા હૈ, નિર્ણય ક્યા હૈ વૃત્તિ બુદ્ધિ વૃત્તિ ને મેરા નિર્ણય હૈ, તુમને અન્ન જલ ખાયા શરીર સે પસાર હુઆ, ઓ જીવડા માતા કે ગર્ભ મેં રાખે, મારો દીકરો પૈસો મારો પરમેશ્વર મૈરી મારી, ગુરુ છોકરા છૈયા શાલિગ્રામ બાપજી પૂજા કોની કરો, કે જીવન ઇતના અલ્પ હો જાતા હૈ, જીવન ઇતના નપાતુલા હો જાતા હૈ કે હમકો પતા હી નહીં કે હમ કિસ લિયે જીતે હૈ. ઈમાનદારી સે દેખો તો હર જીવ જીતા હૈ મુક્ત હોને કે લિયે, પડતે કિસ લિયે હૈ પાસ હોને કે લિયે, પાસ કિસ લિયે હોના ચાહતે કમાને કે લિયે, કમાતે કિસ લિયે ખાને કે લિયે, ઓર ખાતે કિસ કે લિયે જીને કે લિયે, જીતે કિસ લિયે હૈ મરને કે નહીં, મરના કોઈ નહીં ચાહતા, ચિડિયા ભી મરના નહીં ચાહતી ભૈયા, ચૂહા ભી મરના નહીં ચાહતા, जीते हैं मुक्त होने के लिए मनुष्य, लेकिन हमारा मुक्त होना कैसे, हमको किसी ने बंधन में डाला नहीं, हमारी मान्यताओं ने, हमारी पकड़ों ने हमको बंधन में डाल दिया। हमारी ऐसी प्रकार की पकड़े हो गए, इस प्रकार की मान्यता हो गई, समझते कोई आकाश पाताल में भूत बैठा है, आकाश पाताल में देवी देवता बैठा और वो मुक्त करेंगे। भूत के भय को हटाने के लिए तावीज रख लिया, अब तावीज गुम न हो जाए उसका भय लगा है। मैंने बताया था वो कहानी, एक आदमी मरने पड़ा, बुलाया अपने धर्मगुरु को, प्रार्थना कर रहा है कि हे खुदा ताला तू मुझे माफ कर देना, जो कुछ हो गया मुझे क्षमा कर देना। थोड़ी देर में बोलता है कि हे शैतान तू भी मुझे माफ कर देना। तो वो धर्मगुरु पूछता है कि ये क्या, घड़ी में शैतान से माफी मांगता है, घड़ी में खुदा से माफी मांगता है? बोले पता नहीं, न मैं पूरा शैतान हूं न मैं पूरा इंसान हूं, पूरी शैतानियत भी नहीं किया और पूरा मैं ईमानदारी से भी नहीं जी सका। मैं सच कहता हूं, कितना भी धार्मिक आदमी हो, कितना भी सच्चा हो, कितना भी पवित्र हो, फिर भी गहराई में उसको पूर्ण पवित्रता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण तो एक परमात्मा है, कर्ता कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जानसूत राजा ने सपने में देखा कि हंस कह रहे हैं कि जानसूत का तेज क्या है, मैं तो रैंक मुनि के तेज जो दूसरों को शांति और शीतलता देने वाला है, दूसरों के अहंकार को परमात्मा में मिटाने वाला है, जो दूसरे के सत्ता और सामर्थ्य ईश्वर के साथ एक कराने वाला है, ऐसे रैंक मुनि के तेज में मैं विचरता हूं, ब्रह्मवेताओं के तेज में विचरता हूं, जानसूत के तेज में नहीं विचरता हूं। जानसूत ने सुना, रैंक मुनि के पास गए, 600 अशर्फियां वापस दे दी। रैंक मुनि नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाए। जांच करते करते पता चला कि रैंक मुनि कैसे प्रसन्न हो, आदमी लगा दिए पीछे, जिस हेतु जिस कारणों से रैंक मुनि प्रसन्न हो वे कारण उन्होंने खड़े कर दिए, रैंक मुनि के चरणों में एक घाव भेंट कर दिया। रैंक मुनि का जो जो जैसा रैंक मुनि को अनुकूल लगे ऐसा उन्होंने वातावरण कर दिया और रैंक मुनि रैंक पर्ण नाम गांव का रख दिया। कहा कि भगवान अब ये गांव तो मैंने आपके चरणों में अर्पण किया और मेरा सिर आपके चरणों में अर्पण है, मैं और मेरा राज्य कुछ भी नहीं है ब्रह्म विद्या के आगे। तब रैंक मुनि प्रसन्न हुए कि ये अपनी मान्यता छोड़ना चाहता है, रैंक मुनि को गांव की जरूरत क्या। रैंक मुनि ने कहा कि राजन तू अन्न धन ये देकर सबको अपना मानना चाहता है या सबको मैं खिलाता हूं, लेकिन सबके अंदर जो बैठा है उसमें यदि तू स्थिर हो जाएगा तो तेरे को अनुभव होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मैं उत्पत्ति और पालन करता हूं, मैं इतना महान हूं, ऐसा तुझे ज्ञान हो जाएगा। बाहर के साधनों से तू दाता बनकर तेरी असीमता में तू नहीं पहुंचेगा, बाहर के धन से तू पूर्ण धनी नहीं होगा, बाहर की सत्ता से तेरी पूरी सत्ता नहीं होगी, बाहर के राज्य से तेरा पूरा राज्य नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर राज्य मिलियो अविनाशी। तुम उस अचल को जान लो, फिर अचल की सत्ता से ब्रह्मा भी चल रहे हैं, विष्णु भी चल रहे हैं, महेश भी चल रहे हैं, उस अचल चैतन्य का अनुभव कर लोगे तो तुम्हारा ये धन जान सुख संपत्ति जो ससीम है वो तुम्हें असीम मालूम होगी। तुम्हारा शरीर न होते हुए भी तुम रहते हो और तुम ऐसे अखुट हो, तुम ऐसे व्यापक हो कि सच पूछो सब तुम्हारा ही खाते हैं और सब तुम्हारे में ही जीते हैं, तुम इतने व्यापक हो। साक्षात्कार होता है तब बुद्ध पुरुषों का यह अनुभव नहीं होता कि मेरा इतना आश्रम है, मेरे 2000 शिष्य हैं, अभी 50,000 शिष्य हुए, फिर 50 लाख होंगे और 50 लाख शिष्यों का मैं गुरु। नहीं, जब तक ऐसा याद है उसको मैं 50 लाख शिष्यों का गुरु हूं तब तक वो महात्मा नहीं, वो नेता है, धर्म का नेता हो सकता है। महात्मा को तो 50 लाख की सीमा नहीं होती, 50 करोड़ की सीमा नहीं, ये जगत नहीं लेकिन इससे भी अनंत अनंत जो जगत है, उन सब जगतों का जो आधारभूत है वो महात्मा का अधिष्ठान, महात्मा का अपना अनुभव है। महात्मा को अनुभव है कि तमाम तमाम आकाश गंगाएं मुझ में है, तमाम तमाम सूर्य मुझ में है, तमाम तमाम चांद मुझ में है, तमाम तमाम दुनिया मुझ में है और मैं उनमें हूं। वे बदल जाते नाश होते लेकिन मैं नाश नहीं होता हूं, आशाराम नाश हो सकता है लेकिन मैं नाश नहीं होता हूं। हमारे घर में आग लगे तो तुम भागोगे और महात्मा के घर में आग लगे तो बैठ नहीं रहेगा, भागता तो वो भी नजर आएगा, तुम भी नजर आओगे, लेकिन तुम बोलोगे मैं भागता हूं और वो बोलेगा ये भागता है, फर्क हो गया। तुमको कांटा चुभेगा तो तुम भी निकालोगे और महात्मा को चुभेगा तो भी निकालेंगे। बुद्ध को चुभे तो उसे भी पीड़ा होगी और बुद्ध को चुभे तो पीड़ा दोनों को होगी, फिर भी बुद्ध कहेगा कि हाय मुझे चुभ गया अब मैं बच गया, और बुद्ध कहेगा जिसे चुभा था उसको मैंने बचा दिया। बुद्ध अन्न खाएगा और बुद्ध भी अन्न खाएगा, बुद्ध कहेगा ये मेरा जीवन है और बुद्ध कहेगा यही मेरा जीवन है, अन्न ही जीवन है मेरा। अब बुद्ध कहेगा कि अन्न इसका जीवन है, मेरा जीवन और मरण इसके आधार पर नहीं है, मैं अमिट हूं। दृष्टि में फर्क है। घाट वाले बाबा का नाम तो तुमने कई बार सुना है। कोई प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जा रहा था हरिद्वार से, तो मैंने मजाक की, मैंने कहा देखो जा रहे हैं अभी फलानी जगह, उनकी सभा एक बार में आया था, लोग काले झंडे लेके भी खड़े होंगे, ऐसा भी सुना है। तो ऐसा कोई अपना कोई साधक को, ऐसा कोई संत को ऐसा तैयार करे कि राष्ट्र के उसके, बोले भाई जो संत है वो काहे को उलझन में पड़ेगा, जो ज्ञानी है वो उलझन में क्यों पड़ेगा, ये लोग तो देश काल में बेचारे उलझे हुए हैं, ज्ञानी देश काल में क्यों उलझेगा, ज्ञानी वो अपना ज्ञान का राज्य छोड़ के फिर मेरा तेरा की कुर्सी में क्यों आएगा। तो मैं क्या, फिर क्या किया जाए, बोले क्या किया जाए, बस ऊंचे से ऊंचा साधकों को ऊंचे से ऊंचा जाना चाहिए। मैं ऊंचे कैसे जाए, कैसे पहुंचे, बोले बिचारों से पहुंचा जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के थोड़े ऊंचा पहुंचा जाता है। ऊंचे महलों में रहने से आदमी ऊंचा नहीं होता, ऊंचे हेलीकॉप्टरों में या हवाई जहाजों में घूमने से आदमी ऊंचा नहीं होता। जितने विचार ऊंचे होते जाते उतना वो ऊंचा होता जाता है, और जितने विचार हल्के होते जाते उतना वो छोटा होता जाता है। आदमी लंबा होने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता, जितनी समझ बड़ी होती उतना वो बड़ा हो जाता, और जितनी समझ छोटी होती उतना वो छोटा हो जाता है। तो जो रुपयों से नहीं हो सकता, जो धन और सत्ता से नहीं हो सकता, कुटुंबी और पड़ोसियों से नहीं हो सकता, जिनको जीवन भर तुम साथ में लेकर घूमते हो, वे लोग जो नहीं दे सकते हैं, वे वह बात संत लोग तुमको हंसते हंसते दे देते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? कि हम इतने बिखरे हुए हैं, इतना हमने आश को फैला रखा है कि हमको अपने घर में लौटने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। सच पूछो कि अपने आत्मा को जानने में परिश्रम की गुंजाइश नहीं, ईश्वर को पाने में कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इतना उल्टा परिश्रम कर लिया कि ईश्वर भी एक कोई बस मजूरी का विषय बन गया, ईश्वर पाना कोई मजूरी का विषय बन गया। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथीबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ऐसा कुछ संस्कार, ऐसा वातावरण घुस गया। वशिष्ठ कहते हैं राम जी इस जीव को बाल्य अवस्था से जो मूर्खता के संस्कार न मिले, बचपन से इसमें यदि मूढ़ता के संस्कार न सींचे जाए, तो मुक्त होने के लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। बचपन से गलत संस्कारों सींचे जाते हैं बच्चों में। बच्चे को मां के देख देख नहा लिया, आप कितना अच्छा लगता है, तू बड़ा होएगा, तू पढ़ेगा, तू डॉक्टर बनेगा, लोगों को चूसेगा और बंगला बनाएगा और सुखी होएंगे। अब सुखी क्या, दूसरे सुखी है कि ये होगा फिर, तो समझते हैं कि ये जुटाने के बाद सुख होगा, ये जुटाने के बाद, ये करने के बाद सुख नहीं। सुख तो अभी तुम सुख स्वरूप हो, जितनी इच्छाएं कम उतना सुख ज्यादा, और इच्छा नहीं तो परम सुख का भंडार हो गया हो। बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। सिकंदर चले गए, सीजर चले गए, अमेरिका के प्रमुख दिन भर परिश्रम करते थे, किसी दुकान में नौकरी करते थे, और शाम को किसी विद्यार्थी के किताब उधार लेकर रात को पढ़ते थे। एक शाम को देखा कि कोई लकड़हार ताप में लकड़ काट रहा है, कटते नहीं, पसीने पसीने से तर बतर है, हृदय भर गया दया से, लिया उसका हथौड़ा कुहाड़ा लकड़ काट के उसको दे दिए, उसने जाके बेचे तो दुगने पैसे हुए, उसके हृदय के आशीष मिली। उत्साह भरे व्यक्ति को किसी की आशीष मिल जाती है और अपना उत्साह होता है, उसके पास शक्ति थी, अनजाने में थोड़ा वेदांत था, और वो आदमी अमेरिका जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट हुआ। इसी बच्चे को यदि कबीर मिल गए होते तो, नानक मिल गए होते तो, समर्थ रामदास मिल गए होते तो, आद्य शंकराचार्य मिल गए होते तो, अथवा इस बच्चे की मां मदालसा होती तो ये बच्चा कहां पहुंचता। वो केवल अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हो जाता। लोग उसे शायद न भी जानते, लेकिन फिर भी वो हो जाता। ऐसे कई महापुरुष जिनको हम नहीं जानते, उनके संकल्प मात्र से उथल पाथल हो जाती, ऐसे लोग अभी भी हैं। तो जैसा संग एनर्जी सब बच्चों के पास है, एनर्जी सब जीव के पास है, शक्ति सबके पास है, लेकिन जैसा जैसा उनको संयोग मिलता है, जैसे पृथ्वी में रस है, जैसा जैसा बीज डाल दिया जाता है, एक ही सरोवर का पानी और एक ही इलाके की एक ही नंबर की जमीन, एक जगह पर गन्ने हो रहा है, दूसरी जगह पर मिर्च हो रही है, तीसरी जगह पर पुदीना और चौथी जगह पर आलू, पांचवी जगह पर बाजरी तैयार हो रही है। क्यों ऐसा है? जैसा संयोग ऐसा रस का रूप हो जाता है। ऐसे तुम्हारे पास रस स्वरूप आत्मा है, चेतना है, जैसा संयोग मिलता है तो बस मैं हिंदू, मैं सिंधी, मैं गुजराती पढ़ूं तो पास हो जाऊं, पास हो जाऊंगा तो सुख होगा, ये भ्रांति घुस गई। उसी रस को हमने उसमें लगा दिया। भगवान कोई आकाश पाताल में, भगवान कहीं दूर है, सुख कहीं दूर है, वो भी उसी की सत्ता से मान रहे। बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर तभी तो सिर झुका दिया।